SBS हिंदी।
डॉक्टर मिश्रा, ये बताइए कि ये जो तिमाही है इसमें भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है वो 8.2% रही है, जो कि काफ़ी ऊंची है अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन आंकड़ों पर?
देखिए पल्लवी, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये अच्छी खबर है। अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है तो मुझे खुशी होती है, तो ये एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा अचानक से खुश होने वाली बात से हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि अभी एक क्वार्टर का ये रिजल्ट है कि नहीं, एक तिमाही का रिजल्ट है, और हमें पता नहीं है कि ये ग्रोथ सस्टेन हो पाएगी कि नहीं। अगर ये सस्टेन हो पाती है तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए हमें इस खबर को लेकर के।
जी अच्छा, ये बताइए कि क्या कारण है कि ये इस तरह के आंकड़े आए हैं 8.2% के, जो कि मेरे ख्याल पिछले 2 साल में अगर देखें तो सबसे अच्छे आंकड़े हैं अगर विकास दर को देखा जाए तो। तो क्या कोई विशेष कारण है कि इस बार की जो विकास दर है वो थोड़ी ज़्यादा है?
इसकी एक्चुअली जहाँ तक 2-3 चीज़ें अनुमान लगाए जा रहे हैं, ज़्यादातर अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि एक तो इसकी मेन वजह यह है कि अभी जो सरकार ने कुछ नीतियां शुरू की थी जिनका काफी डिसरप्टिव शॉर्ट टर्म प्रभाव पड़ा था, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो इन सब ने काफी वोलेटिलिटी क्रिएट कर दी थी, काफी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी थी, तो अब अभी जो है इनकी डस्ट सेटल हो रही है, तो इनके पॉजिटिव प्रभाव सामने आ रहे हैं उभर करके। दूसरा, अगर आप ये जीडीपी के जो नंबर्स हैं उनका अगर आप डिटेल देखिए, जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो इसकी डिटेल रिलीज की है, तो इसमें जो देखने में आया है कि इसमें सबसे ज्यादा जो ग्रोथ जिन सेक्टर्स ने रजिस्टर की है वो है आपके कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, और इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो इन्होंने ज्यादातर इस ग्रोथ को आगे बढ़ाया है। सेकेंड टीयर पे आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज है, और इसी से मिलते जुलते थोड़ा सा नीचे है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। तो इन्होंने मेनली जो है ये जीडीपी की जो ये इस तिमाही में जो ग्रोथ है उसमें हेल्प की है।
जी अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये ट्रेजेक्ट्री आगे चलती रहेगी, या इस वक्त बताना मुश्किल है कि आगे भी इस तरह के आंकड़े दिखाई देंगे या नहीं?
पल्लवी, इसमें एक्चुअली दोनों ही तरफ के लिए, मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट्स दोनों ही तरफ से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ही तिमाही का आंकड़ा है इसलिए इसे कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। आप अगर इसको देखिए तो इसमें 2-3 कारण है जो कहते हैं कि ये ग्रोथ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि आप देखिए कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों प्राइवेट सेक्टर्स हैं और इन्होंने काफी स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई है। मैं ऐसा कोई कारण देख नहीं सकता जिसकी वजह से ये दोनों सेक्टर स्लो हो जाएंगे, तो ये दोनों सेक्टर शायद मजबूत रहेंगे। तीसरा, आप देखिए तो प्राइवेट कंजम्पशन यानी कि जो उपभोक्ता खपत है वो भी काफी स्ट्रांग रही है, और ये पिछले कई सालों में स्टेडिली स्ट्रांग रही है और बढ़ती जा रही है, मतलब कि लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। इसमें भी कोई ऐसी नहीं वजह लग रही है कि लोग अचानक से खर्चा करना बंद कर देंगे या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ये सब बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फैक्टर है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चिंता की विषय है वो ये है कि इसमें एक बड़ा कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर का। सरकारी खर्चे से जब भी आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो आपको थोड़ा सा एक डाउट रहता है कि सरकार कब तक खर्चा करके जीडीपी को बढ़ा सकती है। कहीं ना कहीं पर सरकारी घाटा सामने आने लगता है और सरकार को खर्चे कट करने पड़ते हैं। तो 2-3 कारण हैं जिनकी वजह से ये ग्रोथ बढ़ती रह सकती है। 1-2 फैक्टर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई शायद ये आपकी ग्रोथ इतनी बड़ी कंटिन्यू ना हो पाए, तो ये हमें देखना है अगले 1-2 साल में कि ग्रोथ का क्या ट्रेंड रहेगा। चूंकि ये एक चुनाव से पहले वाला साल है, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि अगले 1 साल में जो है ये जीडीपी की ग्रोथ में कोई खास कमी आएगी।
जी अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ विकास दर के तो तगड़े आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रुपी है, जो भारतीय मुद्रा है, वो उसमें हमने देखा है कि गिरावट आई है बनस्पत यूएस डॉलर्स के, तो क्या ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं या नहीं है?
एक्चुअली पल्लवी, दोनों चीजें रिलेटेड हैं, लेकिन हिंदुस्तान के केस में बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। तो मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊं आपको जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी जो है इसके चार कंपोनेंट हैं, पहला है कंजम्पशन, दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा है इन्वेस्टमेंट और चौथा कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि शुद्ध निर्यात। इसको कैलकुलेट किया जाता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। तो हुआ क्या है कि ये जो कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स, ये जो है ये रुपए के ऊपर या नीचे जाने से प्रभावित होता है, बाकी तीन आपके बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं रुपए के ऊपर या नीचे जाने से। तो अभी क्या हुआ है कि जो रुपए में गिरावट आई है डॉलर की तुलना में, ये गिरावट आई है मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड इंडियन इकोनॉमी। ये सारे फैक्टर्स भारत की अर्थव्यवस्था के बाहर से जुड़े हुए हैं। जैसे पहला सबसे मुख्य कारण है जिसकी वजह से रुपया गिरा है वो है कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। कच्चे तेल की कीमतें करीब 7% बढ़ गई हैं इंटरनेशनल मार्केट में और हिंदुस्तान अभी भी एक बिग इंपोर्टर है कच्चे तेल का और कच्चे तेल पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। तो जब भी कच्चे तेल के दाम बढ़ता है अचानक से आपका जो इम्पोर्ट बिल होता है बढ़ जाता है और इम्पोर्ट बिल बढ़ने से क्या होता है कि आपकी करेंसी नीचे चली जाती है। दूसरा कारण क्या हुआ है कि आपने कुछ समय पहले समाचार पत्रों में सुना होगा कि टर्की की करेंसी लीरा में बहुत तेजी से गिरावट आई है, बहुत सारे लोगों ने लीरा को डंप कर दिया है जिसका एक प्रभाव बाकी सारी इमर्जिंग करेंसीज में भी देखने को आया है। और तीसरा कारण है कि अमेरिकन इकोनॉमी ने काफी टाइट मॉनिटरी पॉलिसी शुरू कर दी है 2018 में और उम्मीद है कि 2018-19 में कंटिन्यू रहेगी। इसका दुष्प्रभाव यह है कि जो भी करेंसी पेयर है अगर डॉलर ऊपर जाता है तो बाय डेफिनेशन रुपया नीचे जाता है। तो इन तीनों ने रुपए पे डाउनवर्ड प्रेशर डाला है। द रीजन आई सेड कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि भारत की जीडीपी में अभी भी नेट एक्सपोर्ट्स बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है। तो हमारी अभी भी जो है जो इकोनॉमी है अब भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक्सपोर्ट लेड नहीं है, वो मेनली अभी भी कंजम्पशन ड्रिवन है और कंजम्पशन से ही जीडीपी पे प्रभाव पड़ता है। तो अगर रुपया नीचे ना गिरा होता तो शायद और अच्छे फिगर आते, लेकिन रुपया नीचे गिरने से बहुत ज्यादा हमारे पर उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा।
जी, एक आखिरी सवाल कि अगर दूसरी तरफ देखें तो जो बीएसई सेंसेक्स है उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है पिछले 4 सालों में, लगभग मेरे ख्याल से 30-40% बढ़ा है सेंसेक्स, तो क्या इससे भी ये संकेत मिलते हैं कि मूलतः अगर पूर्ण रूप से देखें तो इकोनॉमी सॉलिड ग्राउंड पर है?
जी, इकोनॉमी सॉलिड ग्राउंड पे है। और दूसरा चीज आप जो ये देखते हैं सेंसेक्स की ग्रोथ की, ये दिखाता है कि मतलब इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस है अभी इंडियन इकोनॉमी में। बाकी जहां तक बात है इंटरनेशनल करेंसी की, मुझे नहीं समझ में आता लोग क्यों इतना लेकर के एक्साइटेड हो जाते हैं। आप जब भी देखिए, जब भी एक्सचेंज रेट बदलता है उससे हमेशा विनर्स और लूजर्स क्रिएट होते हैं। अगर आप, मैं और आप अपने आप को देखें यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर रुपया गिरता है तो आपको फायदा होता है क्योंकि अगर आप घर पैसा भेजना चाहते हैं अपने माँ बाप को, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसके माँ बाप उसको पैसा भेज रहे हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है। वही हाल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में होता है। जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं उनको फायदा होता है रुपए के गिरने से और जो इम्पोर्टिंग सेक्टर्स हैं उनको नुकसान होता है। तो ये तो खैर लगा ही रहेगा, लेकिन मेन चीज ये है कि आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसा है और इन्वेस्टमेंट की क्या ग्रोथ है।
डॉक्टर मिश्रा, हमें पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जी, धन्यवाद।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।